आग की वजह से सीसीटीवी कैमरे भी डैमेज हो गए हैं, तो उससे भी ये पता नहीं लगाया जा सकता कि ये सब कैसे हुआ और किसने किया। और अब यहाँ आगे की रिहर्सल कर पाना भी पॉसिबल नहीं है। रिहर्सल की चिंता नहीं है, कुछ दिनों के बाद हमारे स्टूडियो में होगी, वो भी पूरी सिक्योरिटी के साथ। और इस हादसे के पीछे किसका हाथ है ये भी मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, और इसका एम क्या था ये भी समझ चुका हूँ मैं, शान ने कठोर लहजे में कहा। उसकी बात सुनकर रेहान ने तुरंत ही सवाल किया, किसने किया ये सब और क्यों? और कौन करेगा यार, एक ही है जिसके रास्ते का कांटा बना हुआ हूँ मैं, और मुझे अपने रास्ते से हटाने के लिए ये सब प्लान किया गया। वॉशरूम के पास सिलेंडर लीक हुआ तो सबसे पहले मेरे कैबिन भी जाएगा, और इस जहरीली गैस से दम घुट जाता जिससे मैं हमेशा हमेशा के लिए उसके रास्ते से हट जाता। और ये आग भी इसीलिए लगवाई गई ताकि किसी को उसके खिलाफ सबूत भी ना मिल सके, जिससे जैसे सालों पहले वो बच गया था वैसे अब भी उसका नाम कहीं ना आए। तू अमरजीत ठाकुर पर शक कर रहा है? रेहान ने उसकी बात सुनकर शक भरे लहजे में पूछा, जिससे शान ने गुस्से में मुठ्ठियां कसते हुए कहा, हाँ ये सब उस अमरजीत ठाकुर का किया धरा है, सालों पहले भी उसने यही किया था और अब फिर वो खूनी खेल खेलने पर उतर आया है। पर उसे ये नहीं पता कि शांतनु मल्होत्रा को खत्म करना इतना भी आसान नहीं, पहले भी बहुत बार वो कोशिश कर चुका है पर मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सका, इसीलिए अब ये तरीका निकाला है उसने मुझे अपने रास्ते से हटाने के लिए। हर बार तो मैंने इसे छोड़ दिया पर इस बार इतनी आसानी से उन्हें नहीं छोड़ूंगा। हर बार बात सिर्फ मेरी थी तो कुछ नहीं कहा मैंने, पर इस बार उन्होंने इतने लोगों की जान खतरे में डालने की गलती करके खुद मुझे मजबूर किया है उनके खिलाफ एक्शन लेने के लिए, इस बार नहीं छोड़ूंगा मैं उन्हें। शान का चेहरा गुस्से से तमतमाने लगा था। उसकी बात सुनकर रेहान ने थोड़ा घबराते हुए कहा, क्या करने वाला है तू? देख हमारे पास उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है, इसलिए जल्दबाजी में कोई भी गलत कदम मत उठाइयो। रेहान ने उसे समझाने की कोशिश की पर शान के सर पर खून सवार था। उसने गुस्से में जबड़े भींच लिए, मुझे किसी सबूत की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं हमारे बीच पुलिस को नहीं लाने वाला, जो करना होगा मैं खुद करूँगा। और आज उस अमरजीत ठाकुर को पता चलेगा कि मुझसे टकराने और इस घटिया हरकत का मेरे एम्प्लॉयज़ को टारगेट करने का क्या अंजाम होता है। अपनी बात पूरी करते ही शान ने फ़ोन काट दिया। रेहान दूसरे तरफ से बोलता रह गया पर फ़ोन कट चुका। शान के दिमाग में इस वक्त कुछ तो चल रहा था, वो अब भी मुठ्ठियाँ कसे खड़ा था और उसकी आंखें अंगारों से धधक रही थी। अचानक ही उसकी कसी मुठ्ठियों पर किसी के कोमल स्पर्श का एहसास हुआ तो उसने चौंकते हुए घूम कर देखा। उसके बगल में आरवी खड़ी थी जो नम आंखों से उसे ही देख रही थी। शान उसे वहां देखकर चौंकते हुए बोला, क्या कर रही हो तुम यहाँ? आपको देखने आई थी और मैंने आपकी सारी बातें सुन ली हैं। वैसे तो आप मेरी किसी बात को मानेंगे नहीं, फिर भी कहना चाहती हूँ कि गुस्से में अक्सर इंसान गलती कर देता है, इसलिए शांत दिमाग से सोचने की कोशिश कीजिए। क्या सच में जो हुआ उसके पीछे ठाकुर साहब हो सकते हैं? आरवी की बात सुनकर शान के चेहरे के भाव एकदम से सख्त हो गए और उसने अपना हाथ पीछे खींचते हुए गुस्से में कहा, कहना क्या चाहती हो तुम, कि ये सब तुम्हारे बाप ने नहीं किया है? नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं कह रही क्योंकि मैं इस बारे में कुछ जानती ही नहीं हूँ, पर मैं इतना जानती हूँ कि वो जानते हैं कि उस जगह आपके साथ साथ मैं भी होती हूँ, और मुझे नहीं लगता कि वो अपनी उस बेटी की जान खतरे में डालेंगे जिसको वो सालों से ढूंढ रहे थे। बस इसीलिए कह रही हूँ कि एक बार शांत दिमाग से सोचकर देखिए कि क्या सच में आज जो हुआ वो ठाकुर साहब कर सकते हैं। आरवी ने बेहद शांत लहजे में अपनी बात पूरी की और वापस चली गई। आई तो कुछ और बात करनी थी पर वो कह ही न सकी, पर जो उसने कहा उसने शान को सोचने पर मजबूर कर दिया था। शान वहीं खड़ा था जब कार्तिक वहां आया और उसे सोच में गुम देखकर बोला, सर आप ठीक हैं? शान चौंकते हुए अपने ख्यालों से बाहर आया और सर हिला दिया। कार्तिक ने शॉपर्स उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, सर आप परेशान मत होइए, रेहान सर ने पुलिस कंप्लेन कर दी है और पुलिस अपना काम शुरू भी कर चुकी है, जगह सील हो गई है और जल्दी ही हमें पता चल जाएगा कि ये सब कैसे हुआ और किसने किया। शान ने सहमति से सर हिला दिया और उसे कुछ बातें समझाने के बाद वार्ड की तरफ बढ़ गया। उसने आरवी को उसके कपड़े दिए, इतने में कार्तिक ने डिस्चार्ज की फॉर्मेलिटी पूरी कर दी। कुछ देर में सभी वहां से निकल गए। आरवी मल्होत्रा निवास चली गई, शान ऑफिस के लिए निकल गया और रश्मि अपने घर चली गई जहां रेहान उसका इंतजार कर रहा था। रश्मि अपने पेरेंट्स के साथ अपने घर पहुंची तो रेहान को वहां देखकर सभी कुछ हैरान से हो गए। शान ने उनके लिए कार भेजी थी ताकि उन्हें कोई दिक्कत ना हो। घर के बाहर कार रुकी और सब बाहर आ गए। रेहान ने बड़े ही आदर से रजनी जी और आलोक जी को नमस्ते किया, फिर शर्मिंदगी से सर झुकाते हुए कहा, सॉरी अंकल आंटी, आज जो भी हुआ। अभी उसने इतना कहा ही था आलोक जी ने उसकी बात को काटते हुए कहा, अरे बेटा आप क्यों माफी मांग रहे, आपने थोड़ी ना कुछ किया था, होनी थी हो गई, इसके लिए कोई जिम्मेदार नहीं है, जिंदगी में हादसे हो जाते हैं, ये भी एक हादसा ही था, हमारे सारे बच्चे सही सलामत हैं, मुसीबत आई पर टल गई, बस यही बहुत है हमारे लिए। आलोक जी के चुप होने पर रजनी जी ने भी उसकी बात से सहमति जताते हुए बोली, आप खुद को जिम्मेदार मत ठहराइए बेटा, हमें आपसे कोई शिकायत नहीं है,
ये होनी थी जिसे टालना किसी के हाथ में नहीं था। हम तो बस भगवान को धन्यवाद कर रहे हैं कि इतना बड़ा संकट बिना किसी को नुकसान पहुंचाए टल गया। हमारे सभी बच्चे ठीक हैं, बस इससे ज्यादा हमें कुछ नहीं चाहिए। इसलिए आप खुद को जिम्मेदार ठहराना छोड़ दीजिए, बस ध्यान रखिएगा कि दोबारा ऐसा कुछ ना हो। रेहान सहमति में सर हिला दिया। आलोक जी ने उसे अंदर आने को कहा और फिर सब अंदर चले गए। रेहान को अंदर लिविंग रूम में बिठाने के बाद रजनी जी किचन में चली गई और आलोक जी हाथ मुंह धोने चले गए। अब वहां बस रेहान और रश्मि ही थे। रेहान को बात तो करनी थी उससे, पर वो समझ नहीं पा रहा था कि बात शुरू कैसे करे। शायद हिचकिचा रहा था वो, और रश्मि गहरी निगाहों से उसे देख रही थी। कुछ देर तक तो वो खामोश से उसे देखती रही, उसके बॉडी लैंग्वेज को ऑब्जर्व करती रही। फिर भी जब रेहान ने कुछ नहीं कहा तो आखिर में रश्मि ने ही उनके बीच के सन्नाटे को भंग किया। अगर कुछ कहना चाहते हो तो कह सकते हो, इतना सोच क्यों रहे हो? रश्मि की बात सुनकर रेहान ने एक नज़र उसे देखा, फिर वापस सर झुकाते हुए बोला, मुझे तुमसे माफ़ी मांगनी थी। मुझे तुम्हारे साथ होना चाहिए था वहां पर मैंने तुम्हें अकेला छोड़ दिया। लेकिन शान हॉस्पिटल में एडमिट था, उसकी एब्सेंस में मेरी जिम्मेदारी थी वहां की सिचुएशन हैंडल करना, जिससे मैं मुंह नहीं मोड़ सकता था, इसलिए मुझे वहां रुकना पड़ा। रश्मि खामोश बैठी उसकी बात सुन रही थी। जैसे ही रेहान ने अपनी बात पूरी की, रश्मि ने बेहद शांत आवाज में कहा, मुझे पता है और मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है, इसलिए अपने अंदर से ये गिल्ट निकाल दो और ये बताओ कि अचानक हुआ क्या था। रेहान ने अब निगाहें उठाकर उसे देखा और गंभीरता से बोला, अभी तक ज्यादा कुछ तो पता नहीं चला, पर ये जो भी हुआ वो हादसा नहीं था, बल्कि किसी की सोची समझी साजिश का नतीजा था। रेहान की बात सुनकर रश्मि ज्यादा हैरान नहीं हुई, शायद उसे इस बात का अंदेशा पहले से ही था, इसलिए उसने गंभीरता से अगला सवाल किया, तुम्हें क्या लगता है कौन हो सकता है इन सब के पीछे?
मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। शान कह रहा था कि अमरजीत ठाकुर का काम होगा, पर मुझे नहीं लगता कि वो ऐसा करेंगे, क्योंकि जहां तक मुझे पता है उन्हें अपनी बेटी से बहुत प्यार है, और ये जानते हुए कि ऐसा करने से भाभी की जान भी खतरे में पड़ सकती है, वो इतनी बेवकूफ़ी भरा कदम कभी नहीं उठाएंगे। मुझे तो ये सब किसी और का ही काम लग रहा था, पर अचानक हमारा कौन सा नया दुश्मन पैदा हो गया यही नहीं समझ आ रहा। खैर, पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, उम्मीद है कि जल्दी ही असली गुनाहगार का पता चल जाए। तुम इन सब की चिंता छोड़ दो, ये देखने के लिए मैं और शान हैं। तुम बताओ, तुम ठीक तो हो ना? रेहान चिंता भरी नज़रों से उसे देखने लगा। रश्मि ने बड़े ही ध्यान से उसकी बात सुनी, फिर जब उसे यूं परेशान होते देखा तो मुस्कुराकर बोली, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम मेरी चिंता छोड़ दो। और ये बताओ कि ऑडिटोरियम तो अब रिहर्सल लायक रहने गया है, तो अब रिहर्सल कहाँ होगी? शान ने कहा है कि रिहर्सल अब स्टूडियो में होगी और कुछ दिनों के ब्रेक के बाद ही शुरू होगी, ताकि सबको प्रॉपर रेस्ट मिल जाए और सब इस हादसे से पूरी तरह से उभरने के बाद काम पर लौटे। अच्छा फैसला लिया है जीजू ने, रश्मि इतना कहकर चुप हो गई। रेहान आगे कुछ कहने ही वाला था कि अचानक ही उसका फ़ोन बजने लगा। उसने पॉकेट से फ़ोन निकालकर देखा तो सृष्टि की कॉल आ रही थी। रेहान ने कॉल रिसीव किया और कुछ कह पाता उससे पहले ही दूसरी तरफ से सृष्टि की चिंता भरी आवाज़ आई, भाई कहाँ हैं आप? मैं इतनी देर से आपको कॉल कर रही हूँ। कुछ देर पहले ही मुझे थिएटर में हुए हादसे का पता चला और तभी से मैं आपको फ़ोन करने की कोशिश कर रही हूँ, पर कभी आपका फ़ोन लगता नहीं है, कभी बिजी बताने लगता है। पता है कितनी परेशान हो गई थी मैं। आप ठीक है ना भाई? भाभी, शान और आरवी भाभी सब ठीक है ना? किसी को कुछ हुआ हो नहीं?